नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज का हमारा विषय है किसानों की फसलों के समर्थन मूल्य से संतुष्ट क्यों नहीं किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां देश की आबादी की करीबन 3% से अधिक आबादी कृषि व्यवसाय या कृषि पर ही आश्रित रहती है। बीते 3 वर्षों से मानसून में अनियमितता और अधिक बारिश के कारण किसान निरंतर अपने दामों को लेकर असंतुष्ट रहा है और रहता है, क्योंकि किसानों की फसलों को न्यूनतम मूल्य नहीं मिलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमारे साथ में लोहियावादी गांधीवादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप सर, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
धन्यवाद योगेश भाई, नमस्कार।
सर, जिस तरीके से किसान निरंतर अपने दामों को लेकर आक्रोशित रहता है और उनको उनके फसलों के दाम नहीं मिलते हैं, यह एक बहुत बड़ी विपदा है। किसानों की फसलों को लागत के अनुरूप फसलों के दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या बाधा है सर?
देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, किसान जो परेशान हो रहे हैं वो कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। इसका कारण है हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार, और जो हमारे द्वारा सरकार चुन करके जा रही है, चाहे जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं हमारे द्वारा, या जब सदनों में जा रहे हैं तो वहां सदनों में किसान की बात नहीं कर रहे, किसानों के सवालों पे चर्चा नहीं कर रहे, उनके बाजार पे चर्चा नहीं कर रहे, उनके भाव पे चर्चा नहीं कर रहे। क्योंकि आप थोड़ा सा इसके पीछे चलिए तो देखेंगे कि कोई व्यक्ति विधायक बन रहा है या कोई व्यक्ति संसद सदस्य बन रहा है तो चुनाव लड़ने में पैसे कितना खर्चा कर रहा है, लगभग लगभग अपने सीमा से कई गुना जाकर के वो खर्चा करता है। तो पहला आकलन तो यह करना चाहिए कि जो चुनाव में पैसे खर्चा कर रहे हैं वो पैसे कहां से आ रहे हैं। तो वो पैसे इनको कहीं ना कहीं कोई कारपोरेट घराने से आ रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के माफियाओं से आ रहे हैं। तो यह जो सरकारें बन रही है, जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, यह माफिया और कारपोरेट के पैसे पे बन रहे हैं। तो इनका पूरा दिमाग, पूरा रुझान, पूरा सोच और पूरी जो इनकी नीति बनती है वह कारपोरेट जगत को बचाने के लिए, माफियाओं को बचाने के लिए और उनको लाभ पहुंचाने के लिए बनती है। तो उस मुद्दे पे, इनके मुद्दे से किसान बाहर हो जाता है, किसान के बारे में नहीं सोचते। दूसरी बात कि किसान आज अपने भाव को लेकर के परेशान है। वो भाव को लेकर के इसलिए परेशान है कि जिस एवज में महंगाई बढ़ रही है दुनिया, भारत के अंदर, अपने देश के अंदर, उस एवज में किसान के भाव का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। यह भी एक स्कीम है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि किसानों की आय को सीमित कर दिया जा रहा है और उसके बदले में जो लोग है, कारपोरेट को लोग है, कारखाने के लोग है, उनके आय को बढ़ा दिया जा रहा है। तो किसान इस उलझन में उलझ जा रहा है कि उसके जो भाव है, जो दामों के भाव है, उचित नहीं मिल पा रहे। कारण कि वहां पे किसानों के लिए कोई चर्चा करने वाले नहीं है, किसानों के लिए कोई नीति बनाने वाले लोग नहीं है। तो जब तक किसानों के लिए नीति नहीं बनेगी, किसानों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, तब तक किसानों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है और किसानों को भाव मिलने वाले है नहीं। क्योंकि एक तरह से यही सरकार जो है बाजार को पूरी तरीके से छूट दे करके रखी है, और बाजार में जो छूट मिली है वो कारखानों के सामानों पे छूट मिली है, न कि किसान के खेत से निकलने वाले सामानों पे छूट मिली है, उत्पादनों पे छूट मिली है। तो इधर तो आप बांध सीमा बांध दिए, लेकिन कारखानों से निकलने वाले सामानों के लिए आप सीमा नहीं बांधे, उनके लिए कोई लागत मूल्य नहीं तय कर रहे हैं, उनके लिए कोई मूल्य नहीं तय कर रहे। तो आप किसानों के भाव को बांध दे रहे, किसानों के उत्पादन के भाव को बांध दे रहे और कारपोरेट के उत्पादन के भाव को खुला छूट दे रहे। यह कहीं ना कहीं एक नीति है जिससे किसान परेशान हो रहे हैं।
जी सर, क्या सरकार द्वारा समर्थन मूल्य के पैमाने को किस तरीके से, लागत के अंतर को किस तरीके से मापते हैं, और इनका जरिया क्या है कि किसानों की जो लागत मूल्य है और जो भी उनके रासायनिक खाद हो या जो भी उनके कार्य करते हो, वो कौन सा मापदंड है कि सरकार समर्थन मूल्य MSP तय कर रही है? सर
देखिए, पहली बात तो जो सरकार MSP तय कर रही है, यह तय करती है कि किसान के मजदूरी कितने हुए, मार्केट से जो बीज आए उसके भाव कितने हुए, और बाहर के मजदूर कितने लगे हैं। उस आधार पे कि सरकार जो है यह मोटा मोटी मापन बना करके MSP को तय करती है। लेकिन आप देखिए कि किसान के खेत में अगर कोई मजदूर काम करता है तो 1 हफ्ता काम करता है, 10 दिन काम करता है, 4-5 दिन काम करता है, लेकिन किसान का पूरा परिवार उस खेत में काम करता रहता है और 24 घंटा काम करता रहता है। तो क्या किसान के खेत में काम करने वाले उसके घर के लोगों की मजदूरी सरकार जोड़ती है? कभी नहीं जोड़ती है। पानी की कीमत को सरकार नहीं जोड़ती, बाकी जो दवाएं है उसके दवाओं के दाम को सरकार नहीं जोड़ती है। सरकार तो सिर्फ बीज और मजदूरों के दाम को जोड़ देती है, जो वाहन के खर्चे होते उसके दाम को नहीं जोड़ती है, तो सरकार ने एक सेंटीमेंट बना लिया है, मोटा मोटी दो तीन चीजों को जोड़ करके वह एमएसपी तय करने का प्रयास करती है। जबकि एमएसपी तय करने का आधार तो यह होना चाहिए कि जो खेती में समग्रता है, जो समग्र लागत है, किसान के परिवार से लेकर के वाहन से लेकर के पानी से लेकर के बिजली से लेकर के बीज के खर्चे से लेकर के तमाम जो दवाएं है, उन सारे दामों को जोड़ करके एमएसपी तय होना चाहिए। लेकिन सरकार एक मोटा मोटी रेखा खींच दी है, उसके आधार पर एमएसपी तय करती है, पहली
जी
बात। दूसरी बात कि एमएसपी से किसान को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। एमएसपी का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि जो मरीज वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है उसको ऑक्सीजन देकर के जिंदा किया जाता है।
जी
तो सरकार यही चाहती है, क्योंकि सरकार कॉरपोरेट की है, सरकार यह चाह रही है कि किसान बड़ा आंदोलन न कर पाए, किसान आंदोलित न हो, इसलिए उसको एमएसपी रूपी वेंटिलेटर, एमएसपी रूपी ऑक्सीजन देकर के जिंदा रखो। चाहिए यह कि एमएसपी देने के जगह पे तुम एमएसपी सब्सिडी दो, किसान को छूट दो। आप कहते हो कि इंटरनेशनल बाजार में हमारे फसल का भाव तय होगा तब हम किसानों को दाम देंगे। तो भैया इंटरनेशनल मार्केट में आप जाकर के देखो, अमेरिका को देखो, बाकी देशों को देखो कि वो अपने किसानों को कितने परसेंट सब्सिडी देते हैं। वो आप तो देते नहीं हो, लेकिन जब भाव की बात आती है तो आप बोलते हो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तय होगा। यह एक जुमला है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से किसी भी चीज का भाव तय नहीं होता है, जबकि सरकार यह फेंक देती है उनके ऊपर। यह फेंकना नहीं चाहिए, सरकार को तो चाहिए कि समग्रता को जोड़ करके एमएसपी तय करे और तब जाकर के लागत मूल्य निकालेगी, तब जाकर के किसानों की भलाई हो सकती है। अन्यथा जो सरकार अभी मापक तय की है, उस मापक के आधार पर एमएसपी निकालने से किसानों की भलाई नहीं होने वाली है।
सर, अगला सवाल यही कि अनेक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग
जी
परिस्थितियां हैं।
जी
मध्य प्रदेश में अलग परिस्थितियां, महाराष्ट्र में अलग है, हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग है, अलग अलग
जी
परिस्थितियों में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं देखी जाती हैं। कहीं 2 महीने बारिश हुई कंटिन्यू, 3 महीने बारिश हुई, कहीं एक
जी
महीना बारिश हुई। तो यह भी एक एमएसपी को इसी को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि खेती में किसान कितनी मेहनत करता है, कितने रासायनिक का प्रयोग करता है, कि यह भी एक मापदंड होना चाहिए आपकी नजर में।
बिल्कुल मापदंड होना चाहिए, जहां जैसी परिस्थिति हो। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना कि किसान के समग्रता को आप अध्ययन करिए, समग्रता के अध्ययन करने के आधार पे, उसको जोड़ने के आधार पर आप एमएसपी निकालिए। आप यह ना तय कर ले कि अमेरिका में क्या हो रहा है, या अपने ही देश के देख लीजिए कि पंजाब के किसान जो उन्नत किसान है, वो संपन्न किसान है, आप वहां के किसानों की तुलना मध्य प्रदेश के किसानों से करेंगे तो भी अंतर नहीं निकल पाएगा। तो आपको अगर एमएसपी तय करना है, राज्य को खास करके, जो राज्य सरकारें एमएसपी देती है, तो उनको तो अपने प्रदेश के आधार पर तय करना चाहिए, दूसरे राज्यों के आधार पर आप तय न करें। क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग भौगोलिक सीमा है, हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति अलग है, तो और हर राज्य के फसल भी अलग अलग है। किसी राज्य में कोई अन्य फसल होती है, किसी राज्य में कुछ और फसलें होती है, तो उन फसलों के आधार पर तय होता है। तो यह भी परिस्थिति काम करती है कि कौन से राज्य प्राकृतिक आपदा से ज्यादा प्रभावित हो रहा है, कौन सा राज्य कम प्रभावित हो रहा है, किस राज्य के किसानों की स्थिति अच्छी है, किस राज्य के किसानों की स्थिति खराब है। तो आप तो समान के साथ समान व्यवहार करें, असमान के साथ असमान व्यवहार करें। जहां का किसान कमजोर है, आप वहां ज्यादा लाभ भाव देने का काम करिए, वहां सब्सिडी ज्यादा देने का प्रयास करिए। जहां का किसान कम प्रभावित है, उसको कम देने का प्रयास करिए। लेकिन आप भाव देने में तो समग्रता का अध्ययन करते हैं कि नहीं, सारे किसान बराबर है, लेकिन जब उनको एमएसपी देने की बात आती है, जब उनके लागत मूल्य को देने की बात आती है, आप वहां पे समग्रता का अध्ययन नहीं करते, आप वहां पे विभेद करने लगते हैं। ये विभेद को मिटाना होगा, जो अन्य राज्यों के किसानों के साथ सरकार मिला करके अध्ययन कर लेती है, वो मिलावट से नहीं। हर राज्य को चाहिए कि अपने अपने किसानों को अपने अपने नीति के तहत दे, और अपने अपने नीति के तहत उनका भाव बनाए, अपने अपने नीति के तहत उनको छूट दे, सब्सिडी दे, ताकि किसान आगे बढ़ सके, अपना जीवन यापन कर सके और कृषि के माध्यम से देश का विकास कर सके।
जी सर। सर, क्या किसानों को सरकार द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती है वो जमीन स्तर पर कितनी कारगर है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या फिर अन्य कोई योजना हो, जमीन स्तर पर कितना प्रभाव दिखता है उसके सर?
देखिए, सरकार जो बीमा बना रही है, यह बीमा भी आज प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया जा रहा है। अगर बीमा को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में न देकर के सरकारी कंपनियों के हाथ में रखा जाता तो एक तरीके से दबाव होता, बंधन होता, एक प्रतिबंध होता। लेकिन आज तक तो हम भी नहीं समझ पाए और किसान भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि अब फसल बीमा है क्या, किस आधार पे होता है, उनको कितने रुपए मिलता है। आप देखिए कि फसल जब बर्बाद होती है तो किसानों को कितने रुपये का चेक मिलता है। हमको तो भी पता चला कि एक एकड़ फसल बर्बाद होने पे 200-300 रुपया का चेक मिल जाता है। बताइए, 200-300 रुपया का फसल होता है क्या एक एकड़ में? कितने गुना हो जाता होगा, लेकिन नहीं होता है। तो यह भी एक लूट की छूट है कि आप प्राइवेट कंपनियों को फसल के बीमा का लाभ दे रहे हैं, फसल के बीमा की जिम्मेदारी उनको दे दे रहे कि आप बीमा करिए, यह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि किसानों को लाभ किस पर मिले इस पे सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करना चाह रही, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से हर व्यवस्था को निजीकरण के तरफ ले जाना चाहती है, और निजीकरण के अगर हाथ में जा रहा है तो उससे किसानों का विकास होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित वर्ग है आज के समय में तो किसान और मजदूर ही है, जिनके लिए कोई नीति और कोई निर्धारण सरकार नहीं कर पा रही है।
जी सर, सर देश की 3% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, उसी को लेकर डॉक्टर लोहिया जी की जो दाम बांधो नीति है सर, उसको किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए ताकि किसानों का हित सही हो सके, उनको उनके दाम सही मिल सके।
देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में नीति अपनाई थी। उन्होंने कहा था, 3 प्रकार की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक दाम बाधो नीति अपनाओ, आय की सीमा तय करो और खर्च की सीमा तय करो। लेकिन 60 के बाद की जो भारत की सरकारें बनी, उन्होंने इस बात को अपनाया नहीं। बाद में स्वामीनाथन आयोग सरकार ने बनाई, स्वामीनाथन आयोग ने लोहिया के इस बात को अपनाया, लेकिन एक पक्षी होकर के अपनाया। उसने क्या किया कि किसानों को कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना दिया जाएगा। किसानों के लिए तो उसने सीमा रेखा खींच दिया, लेकिन कारपोरेट जगत के लिए सीमा रेखा नहीं खींचा उसने। जबकि लोहिया जी का सिद्धांत था कि अगर किसानों को लागत का 1.5 गुना आप दे रहे हो तो कारपोरेट जगत को भी लागत का 1.5 गुना ही दो, उनके समग्रता को जोड़ लो और उसपे आप 50% जोड़ करके दे दो। यानी उनको अधिकतम देने की बात कहे थे, उनको न्यूनतम की बात कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि स्वामीनाथन आयोग भी एक नौकरशाही के दिमाग से निकला था, वह भी अधूरा अधूरा रिपोर्ट बना दिया और सरकार उसी को अब मापक बना करके चल रही है। हमारे किसान संगठन भी जो है वो कह रहे कि स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो। भैया, स्वामीनाथन आयोग तो लागू होगा तो उससे फायदा आपको क्या मिल गया उसके एमएसपी से, आप यह तो बताओ। यह तो उनको बोलना चाहिए कि लोहिया ने जो समग्रता के रूप में अध्ययन किए थे कि अगर किसान को लागत का आप 1.5 गुना दे रहे हैं तो कारपोरेट जगत से निकलने वाले उत्पादन का भी 1.5 गुना ही दो, तब जाकर के संतुलन बनेगा। लोहिया का इसके दूसरा मतलब था लोहिया जी का कि बाजार पे नियंत्रण किस प्रकार से। आप देखिए कि आज अगर किसान के खेत का गेहूं निकलता है, चाहे कपास का वर्तमान में चल रहा है, तो कपास कितने रुपए क्विंटल जा रहा है? 8,000 रुपया, कहीं कहीं 7,500, कहीं कहीं 8,200 या 8,300 रुपया क्विंटल है।
जी
लागत का जोड़ लीजिएगा कि कितने उसको फायदा हो रहा है। लेकिन कारपोरेट से, कारखानों से निकलने वाले माल की कीमत कितनी हो रही है? 50 गुना 100 गुना ज्यादा तय करके बेचा जा रहा है। और कारपोरेट जो जगत है, जो कारखानों के मालिक है, वह अपना भाव स्वयं तय कर लेता है, लेकिन क्या किसानों को भाव तय करने का अधिकार मिला है? आज तक नहीं मिला। तो लोहिया जी का मतलब था कि अगर आप दाम बाधो नीति अपना रहे हो तो उससे बाजार पर नियंत्रण होगा, बाजार को लूटने की छूट नहीं मिल पाएगी। आप अगर किसानों पे प्रतिबंध लगा रहे हो तो बाजार पे भी प्रतिबंध रहेगा और एक संतुलन बना रहेगा। अगर इधर 50% बढ़ेगा तो उधर भी 50% बढ़ेगा। तीसरा, आप यह देखिए योगेश भाई कि अगर मान लीजिए किसान साल भर में 5,000 रुपया या 10,000 रुपया प्रति एकड़ फायदा कमा रहा है, मुनाफा मान लीजिए, तो उसके एवज में किसान के साल भर का खर्चा जोड़ लीजिए ना, दवा से लेकर के, पानी से लेकर के, जीवनचर्या के तमाम साधन से लेकर के, कपड़े से लेकर के, पढ़ाई तक की व्यवस्था को जोड़ दीजिए, चिकित्सा तक की व्यवस्था को जोड़ दीजिए, तो वो 10,000 में क्या हो पाएगा? अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है और 10,000 रुपये प्रति एकड़ फायदा कमा रहा है, तो क्या 50,000 रुपया में 5 लोग, 7 लोग या 10 लोग उसके परिवार के आज पल जाएंगे? एक तरफ बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसमें संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाजार को पूरी तरीके से आज छूट दे दी गई। लोहिया जी का मानना था कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों को मौलिक अधिकार बनाओ, तो वो भी नहीं बनाया गया। अगर चिकित्सा मौलिक अधिकार बन जाती तो आज आप देखिए कि दवा का जो हमारा सेक्टर है, जो चिकित्सा का क्षेत्र है, वो निजीकरण में चला गया, कितना महंगा हो रहा है, एक किसान के लिए इलाज कराना संभव नहीं हो पा रहा है। तो लोहिया जी ने दाम बाधो जो नीति अपनाए थे, उन्होंने समग्रता का अध्ययन किया था, उन्होंने सारी बातों को जोड़े थे और तब कहे थे कि दाम बाधो नीति अपनाओ और उसके साथ साथ चिकित्सा को मौलिक अधिकार बनाओ, ताकि जो बाजारिक लूट है उससे किसानों को छूट मिले और संतुलन समाज में बना रहे।
जी सर, मेरा अंतिम सवाल है और संक्षेप में इस पर विचार चाहूंगा आपके कि
जी,
खेतों में सर आजकल बहुत सी तकनीक आ गई है और लेकिन जो मिट्टी परीक्षण आजकल बहुत मायने रखता है सर, इनकी कोई मापदंड नहीं है और कई स्थानों पर इसकी कोई उपलब्धता नजर नहीं आती है, क्यों सर? सरकार इस पर क्या वो ध्यान नहीं दे पा रही?
देखिए, तकनीकी होना अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी के बारे में जो किसान अनुभव करता है, जो किसान सुझाव दे सकता है, वो कोई मशीन सुझाव नहीं दे सकती है। वो मशीन बनाने वाला कौन है? क्या कभी खेत में जाके काम किया है क्या? मशीन क्या जानती है कि किसी खेत में क्या होगा क्या नहीं होगा? ठीक है, मशीन है, उसकी तकनीकी है, उसका फार्मूला है, वो अपने फार्मूला से काम करती है। लेकिन वो फार्मूला, अगर पश्चिम बंगाल के फार्मूला को आप सोचेंगे कि हम पंजाब में लागू कर दें, उत्तर प्रदेश में लागू कर दें, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपको मिट्टी परीक्षण ही सही करना है, तो आप एक किसान आयोग बनाओ और उसमें हर प्रदेश के, हर क्षेत्र के किसानों को रखो। किसान समितियां बना लो, क्षेत्रीय समितियां बना लो, प्रादेशिक समितियां बना लो, जिला के समितियां बना लो, और उनके आधार पर मिट्टी का परीक्षण करा लो। उससे आपको सही से डाटा भी मिल जाएगा और सही से मिट्टी की जानकारी भी मिल जाएगी, और उसके आधार पर जो खर्चा करना है करो। लेकिन यह तो तकनीकी के नाम पर लूटने और लूटने की छूट देने की व्यवस्था है योगेश भाई। इसे कोई मिट्टी परीक्षण से कोई बहुत बड़ा सवाल और कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, जब तक कि किसानों को उसमें शामिल न किया जाए।
जी, तो ये थे डॉक्टर अनुसर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से कपास की फसलों के समर्थन मूल्य पर किसान असंतुष्ट इसको लेकर अपनी राय दी। डॉक्टर साहब, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी योगेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।